आकाशवाणी गोरखपुर से प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचार बुलेटिन के साथ मैं विकास राय। पहले मुख्य समाचार। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आज डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। झांसी और कानपुर के बीच 36,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा औद्योगिक शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, शहर में बनाएंगे एक विशेष हवाई अड्डा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा, ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो कि भारत को भी मिले नोबेल पुरस्कार। और देवरिया जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत, 4 घायल। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नई दिल्ली के भारत मंडपम में जिला न्यायपालिका के राष्ट्रीय सम्मेलन का शुभारंभ करेंगे। प्रधानमंत्री सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक डाक टिकट और सिक्का जारी करेंगे। इसके बाद वे 3 वंदे भारत ट्रेन को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से रवाना करेंगे। इन ट्रेन के जरिए मेरठ लखनऊ, मदुरई बेंगलुरू और चेन्नई नागरकोइल पर कनेक्टिविटी में सुधार होगा। प्रदेश में वंदे भारत ट्रेन कल से लखनऊ से मेरठ और 3 सितंबर से मेरठ से लखनऊ के बीच चलेगी। उत्तर रेलवे प्रशासन की तरफ से ये ट्रेन मंगलवार को छोड़कर पूरे हफ्ते चलेगी। वंदे भारत ट्रेन लखनऊ से दोपहर 2:45 पर रवाना होगी और 7.25 घंटे में रात 10 बजे मेरठ पहुंचेगी। लखनऊ से चलने के बाद ये ट्रेन बरेली और मुरादाबाद में रूकेगी। मेरठ से ये ट्रेन सुबह 6:35 पर रवाना होगी। प्रदेश सरकार औद्योगिक विकास को बढ़ावा देने के लिए झांसी और कानपुर के बीच लगभग 36,000 एकड़ क्षेत्र में एक औद्योगिक शहर विकसित करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल लखनऊ में एक कार्यक्रम में इसकी घोषणा करते हुए कहा कि शहर में एक विशेष हवाई अड्डा भी बनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश अब निवेशकों की प्राथमिकता में है और उनकी सरकार राज्य में निवेश के इच्छुक निवेशकों और उद्यमियों को हर तरह की मदद और समर्थन देगी।
लगभग हमने 36,000 एकड़ लैंड में झांसी और कानपुर के बीच में इस नए औद्योगिक शहर को बसाने की कार्रवाई को आगे बढ़ चुके हैं और तेजी के साथ हमारा कार्यक्रम बनता है। याद करना, नोएडा को बसने में 46 साल लगे और 46 साल के बाद वहां एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रूप में जीवन अब आ रहा है। यहां पर हम इसके साथ ही फोर लेन की कनेक्टिविटी दे चुके हैं, बेहतरीन सुविधाएं देंगे और पहले से ही डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कॉरिडोर का एक नोड वहां आ चुका है। लखनऊ उसके आसपास के 6 जनपदों को जोड़ करके यहाँ पर हम लोग स्टेट कैपिटल रीजन के रूप में इसे डेवलप कर रहे हैं। दुनिया इसके नाम से संभावनाएं हमें बनेंगे।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने 32 औद्योगिक इकाइयों को करीब 1,300 करोड़ रुपए की प्रोत्साहन राशि वितरित की। साथ ही 4,500 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश के लिए 10 औद्योगिक इकाइयों को लेटर ऑफ कम्फर्ट वितरित किए। मुख्यमंत्री ने राज्य में फ्लिपकार्ट कंपनी के 2 वेयरहाउस का भी वर्चुअली उद्घाटन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय 27 सेक्टोरल पॉलिसी लागू की जा रही है। इसके साथ ही 125 सीएम फेलो इन्वेस्ट यूपी के साथ मिलकर उद्यमियों की समस्याओं का समाधान करने में योगदान कर रहे हैं। प्रदेश के 67 जिलों में आयोजित की जा रही आरक्षी नागरिक पुलिस परीक्षा का आज आखिरी दिन है। परीक्षा को देखते हुए प्रदेश सरकार की ओर से आज भी रोडवेज की बसों में अभ्यर्थियों द्वारा एडमिट कार्ड दिखाने पर निःशुल्क यात्रा की व्यवस्था दी गई है। कल ये परीक्षा 1,174 केन्द्रों पर शांतिपूर्ण माहौल में सम्पन्न हो गई। मेरठ जिले में कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर परीक्षा देने का प्रयास कर रहे 3 अभ्यर्थियों को कल पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। परीक्षा की शुचिता सुनिश्चित करने के लिए सभी केन्द्रों पर कड़े इंतजाम किए गए हैं। पुलिस महानिदेशक प्रशांत कुमार के निर्देशानुसार नकल माफियाओं पर नजर रखने के लिए एसटीएफ, स्थानीय पुलिस और साइबर क्राइम की टीम पूरी तरह से मुस्तैद है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम से भी परीक्षा केन्द्रों पर नजर रखी जा रही है। पेंशनभोगियों के लिए प्रक्रिया को सरल बनाने के एक उपाय के रूप में सरकार ने कल एकल सरलीकृत पेंशन आवेदन पत्र जारी किया और भविष्य पोर्टल का ईएचआरएमएस के साथ डिजिटल एकीकरण किया। इन अनूठे उपायों की शुरूआत कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह ने नई दिल्ली में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि सरकार जीवन सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग के सचिव विवेक जोशी ने मानव संसाधन प्रबंधन को बढ़ाने के लिए इन उपायों को महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। नई व्यवस्था में 9 पेंशन फार्म को मिलाकर एक नया फार्म बनाया गया है जो पूरी प्रक्रिया को सरल बनाता है। पेरिस पैरालंपिक में उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर की प्रीति पाल ने 100 मीटर की दौड़ T35 में कांस्य पदक जीता है। वे पैरा खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाली पहली धावक हैं। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पदक विजेताओं को शुभकामनाएं दी हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन हमारे यूट्यूब चैनल AIR न्यूज गोरखपुर और एक्स हैंडल AIR News_GKP पर भी उपलब्ध है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कल दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के 43वें दीक्षांत समारोह में शामिल होकर मेधावियों को मेडल देने के साथ ही विद्यार्थियों को उपाधि भी वितरित की। समारोह के दौरान राज्यपाल ने 49 छात्राओं और 12 छात्रों सहित 61 मेधावियों को स्वर्ण पदक प्रदान किये। उन्होंने इस मौके पर 87,359 विद्यार्थियों को स्नातक एवं स्नातकोत्तर और 166 विद्यार्थियों को PhD की उपाधि दी। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए राज्यपाल ने कहा कि ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित करनी चाहिए जिससे 80 साल से इंतजार कर रहे भारत को भी नोबेल पुरस्कार मिल सके। राज्यपाल ने गोरखपुर जिले में रावत पाठशाला में आंगनबाड़ी केंद्र का दौरा किया और वहां के बच्चों से संवाद किया। उन्होंने बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए शुभकामना देते हुए उन्हें फल व चॉकलेट दिया। राज्यपाल ने आंगनबाड़ी केंद्र के बच्चों के लिए एक चिकित्सा संबंधी फर्स्ट एड बॉक्स भी भेंट किया। बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण प्रदेश में कई नदियों का जलस्तर प्रभावित हुआ है। गंगा नदी बलिया जिले में खतरे के निशान से ऊपर पहुंच गई है। वहीं फरुखाबाद और वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ने से तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों की चिंताएं बढ़ गई हैं। इसके अलावा क्वानो नदी गोंडा में खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। वहीं घाघरा नदी बाराबंकी और अयोध्या में खतरे के निशान से महज आधा मीटर नीचे है। वाराणसी में गंगा के बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जल पुलिस और NDRF की टीमें घाटों पर नजर रख रही हैं। गंगा में छोटी नाव का संचालन बंद है। उधर गाजीपुर में गंगा का जलस्तर चेतावनी बिंदु से ऊपर पहुंच गया है। तटवर्ती इलाकों में प्रशासन की ओर से लोगों को सावधानी बरतने को कहा जा रहा है। इसके अलावा गोरखपुर में 34 गांव बाढ़ से प्रभावित है। लोगों की सहूलियत के लिए नाव और मोटर बोट लगाई गई है। बाराबंकी में 2 गांव में कटान हो रही है जिससे लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं। देवरिया जिले के गौरी बाजार थाना क्षेत्र में पोखरबिंडा गांव के पास गोरखपुर देवरिया मार्ग पर एक गैस एजेंसी से जुड़े 4 पहिया वाहन ने 3 बाइक पर सवार लोगों को टक्कर मार दिया। इस हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई जबकि 4 अन्य घायल हैं। बीती रात करीब 9 बजे हुई इस दुर्घटना के बाद पुलिस के आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। वाहन चालक को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। प्रदेश में 6 रोगियों को खोजने के लिए 9 सितंबर से 20 सितंबर तक अभियान चलाया जाएगा। इस दौरान स्वास्थ्य विभाग की टीम TB के लक्षण वाले मरीजों को चिन्हित कर उनकी जांच करवाएगी। बीमारी की पुष्टि होने पर मरीजों का निःशुल्क इलाज होगा। मिर्जापुर जिले के जिला क्षय रोग उन्मूलन अधिकारी डॉ अनिल कुमार ओझा ने बताया कि इस अभियान को सफल बनाने के लिए 100 से अधिक टीमों का गठन किया गया है। इस बीच फाइलेरिया से बचाव के लिए प्रदेश के 27 जिलों में चलाया जा रहा सर्वजन दवा सेवन MDA कार्यक्रम 2 सितंबर को समाप्त हो रहा है। गोरखपुर के जिला मलेरिया अधिकारी अंगद सिंह ने कहा कि अभियान के बाद भी स्वास्थ्य केंद्रों पर इस दवा के सेवन की सुविधा उपलब्ध रहेगी। उन्होंने बताया कि जिले में फाइलेरिया रोगी नेटवर्क स्वयंसेवी संगठनों और समाज के विभिन्न वर्गों की मदद से भय व भ्रांति दूर कर विभागीय टीमें घर घर जाकर दवा खिला रही है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के 75 वर्ष पूरे होने पर आज डाक टिकट जारी करेंगे प्रधानमंत्री। प्रदेश को एक और वंदे भारत ट्रेन की देंगे सौगात। झांसी और कानपुर के बीच 36,000 एकड़ क्षेत्र में विकसित होगा औद्योगिक शहर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा शहर में बनाएंगे एक विशेष हवाई अड्डा। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने गोरखपुर विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में लिया हिस्सा। कहा ऐसी शिक्षा प्रणाली विकसित हो कि भारत को भी मिले नोबेल पुरस्कार। और देवरिया जिले में हुई सड़क दुर्घटना में 3 लोगों की मौत 4 घायल। समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।